Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Krishna Balaram Jai, Krishna Balaram, Krishna. Krishna Balaram Jai, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Radha Sham Sundara, Radha Sham Sundara, Radha Sham Sundara. Gauranitai Jai Jai Gauranitai, Gauran. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol nitai Gaur Hari. Jai 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 Prabhupada, 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 Jai 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 Prabhupada. Jai Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Chajri Vahindi Sustadhari Sadhari 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 Vinda Bhakti Vidanta Swami Shri Prabhupada Maharaj Ki Jai Ananta Koti Vaishna Vinda Ki Jai Grandharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nidai Gaura Hari Vimanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namastitya Naranchaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtavrayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ruttama Sloke Bhakti Bhavati Nashtagi Srimad Bhagavatam Ashtamaskanda Adhyay 6 Devataon Tata Surudara Sandhi Ki Ghoshna Namak Is Adhyay Ke 8th Slok Se Hum Log Kata Praram Karenge Shrivam Vacha Ajat Janma Sthiti Sanyamaya Gunaya Nirvana Sukarnavaya Anonanim Nainapa Digandadhamne Mahanubhavaya Namo Namaste Mahanubhavaya Namo Namaste Ajat Janma Sthiti Svanyamaya Gunaya Nirvana Sukarnavaya Anonaranim Naya Parigandha Dhamne Mahanubhavaya Namo Namaste अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाण गुणन्वाय गुणाय निर्वाण सुखन्वाय अनौरलिम्न अपरिगण्य धाम्न महानुभावाय नमो नमस्ते। एक जेंट्स एक लेडीज शब्दार्थ श्री ब्रह्मवाच श्री ब्रह्मा जी ने कहा अजात जन्म स्थिति संयमाय। श्री भगवान को जो कभी जन्म नहीं लेते किंतु जिनका विविध अवतारों में प्रागट्य कभी बंद भी नहीं होता, अगुणाय भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से सत्गुण रजगुण तथा तमोगुण से कभी भी जो प्रभावित नहीं होते, निर्वाण सुखर्णवाय भौतिक सृष्टि से परे शाश्वत आनंद के सागर को अणोर अणिमने अणु से भी छोटे अपरिगण्य धाम ने जिनके शारीरिक स्वरूप की अनुभूति भौतिक चिंतन से कभी नहीं की जा सकती, महानुभावाय जिनका अस्तित्व अचिंत्य है, नमः उनको नमस्कार, नमः पुनः नमस्कार ते आपको। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यद्यपि आप अजन्मा है किंतु अवतार के रूप में आपका प्रागट्य तथा अंतर ध्यान होना सदैव चलता रहता है। आप सदैव भौतिक गुणों से मुक्त रहते हैं और सागर के समान दिव्य आनंद के एकमात्र आश्रय है। अपने दिव्य स्वरूप में नित्य रहते हुए आप अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अतएव हम आपको जिनका अस्तित्व अचिंत है सादर बारंबार प्रणाम करते हैं। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 4:6 में भगवान कहते हैं कि जो अपि असन अभी आत्मा भूतानाम ईश्वरो विसन प्रकृति समाधिष्ठाय संभवामि आत्मायाः। यद्यपि मैं अजन्मा होते हुए भी और मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होने वाला होने पर भी मैं सारे सचेतन जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य स्वरूप में प्रकटित होता हूँ। भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोक 4:7 में श्री भगवान कहते यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत भूतानम अधर्म से तदा आत्मनम से जाम्यहम। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्राधान्य हो जाता है तब तब ये भारत मैं स्वयं अवतीत होता हूँ। इस तरह यद्यपि श्री भगवान अजम्मा है किंतु वे भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राम जैसे अवतारों के विविध रूपों में प्रकटित होते रहते हैं, क्योंकि उनके अवतार सनातन है। अतएव इन अवतारों द्वारा संपन्न किए गए कार्यकलाप भी सनातन होते हैं। उन पुरुषोत्तम भगवान का प्रागट्य इसलिए नहीं होता कि सामान्य जीवों की तरह उन्हें कर्म के द्वारा बाध्य होकर विशेष शरीर धारण करना होता है। यह समझना होगा कि श्री भगवान का शरीर तथा उनके कार्यकलाप दोनों दिव्य है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। ये लीलाएं श्री भगवान के लिए दिव्य आनंदमय है। अपरिगण्य धामने शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान द्वारा विभिन्न अवतारों में प्रकट होने की कोई सीमा नहीं है। ये सारे अवतार सनातन आनंदमय और ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। हम अज्ञान तिरंदस्य ज्ञान जन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपकदामज्जं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देहं श्री गुरौ श्रीपदकमलं श्रीगुरुर्नमस्नवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखन्वितं मुखं करोति वाचालं पंगुमलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं अंधे परमानंद माधवं श्री गुरु नदिन तारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम जयतं सुरत पंगौर मम मंदम दिर्गति मत्सरवस्वदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहन वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैवच्च पतितनं पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति भक्तिवेदांत स्वामी तो नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष सिंधवादी पाश्चात्य देश तार। जहां तक मैं समझ रहा हूं आज नौवां श्लोक होगा, नहीं आठवां श्लोक कल हुआ था, कल सात हुआ था, तो भूल से मुझे भेज दिया है नौवे के लिए बाद। ठीक है, जो कुछ भी है अजात जन्म स्थिति संयमाय अगुणाय निर्वाण सुख अर्णवाय अनुरणिम ने अपरिगण्य नाम ने महानुभावाय नमो नमस्ते। तो इस कथा का उपक्रम इस प्रकार आ रहा है कि देवताओं की कुछ समस्या को लेकर के, जो वस्तुतः एक महर्षि के कोप के कारण इंद्र को जो शाप मिला था कि शीघ्र ही तुम समस्त त्रिलोकी की स्त्री से रिक्त हो जाओ, श्री दुर्वासा जी ने इस शाप दिया था और उसके कारण देवताओं की भयंकर हार हुई और वो देवता लोग रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और श्री ब्रह्मा जी से जब कोई कार्य नहीं होता है तब भगवान का अनुसंधान करते हैं, और जैसे ही श्री ब्रह्मा जी भगवान को ये प्रार्थना करते हैं तो तुरंत भगवान आकर के उनके कार्य को संपन्न करते हैं। तो उसी प्रकार इन देवताओं की समस्या के समाधान के लिए श्री ब्रह्मा जी शिवजी समेत समस्त देवगण उन भगवान के पास जाते हैं और भगवान को आह्वान करते हैं और उन आह्वान से भगवान प्रकट हो गए और प्रकट के बाद उनके स्वरूप लक्षण का कुछ वर्णन पिछले श्लोकों में आया है, बहुत सुंदर वर्णन है। कहते विदंचो भगवान दृष्टवा सर्वेण ताम तनुम, तो भगवान के उन अत्यंत सौंदर्य का वर्णन पिछले श्लोक में आया है, सातवें श्लोक में। तो ऐसे भगवान जब उपस्थित हुए तो श्री ब्रह्मा जी, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्तुति प्रारंभ किया। उन स्तुति का ये प्रथम श्लोक है। उन श्लोक में सबसे पहले भगवान को प्राकट्य के लेकर के या भगवान का प्राकट्य को लेकर के ब्रह्मा जी कुछ चर्चा करते हैं और इस चर्चा में श्री ब्रह्मा जी ये भी बात कहते हैं कि भगवान का ये जो वपु है जिसका हम लोग दर्शन करते हैं वो वपु कैसा है, तो बोलते हैं अगुणाय, वो गुणों से विहीन अर्थात निर्गुण है। भगवान का शरीर निर्गुण है उसका अर्थ बराबर समझना चाहिए। निर्गुण का अर्थ होता है जो प्रकृति के गुणों के द्वारा सर्जित नहीं है, अर्थात सच्चिदानंद विग्रह जिनका है उनको निर्गुण कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि श्री भगवान का जो ये शरीर है वो अगुणाय, गुणों की रचना नहीं है। जैसे हम सबका शरीर उन तीन गुणों के अंदर हमारे कर्म के अनुसार प्रकृति के द्वारा रचित है, जैसा हमारा कर्म होता है उसके अनुसार हमको उसी प्रकार की डिजाइन का शरीर मिलता रहता है और हमेशा वो बदली रहता है। और दूसरा ये दुखों का घर है, इसमें सुख कुछ है ही नहीं, सुख का आवास मात्र जिनमें है ऐसा ही हमारा शरीर है। वस्तुतः तो जीव के लिए एक कैद के समान शरीर है। इस शरीर में डाल करके प्रकृति जीव को दुख देती है, पीड़ा देती है, लेकिन वो पीड़ा को ही जीव सुख मान लेता है। क्योंकि हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, इसलिए ये दुखों को हम सुख समझ लेते हैं और उसी को बटोरने की फेरे में लगे रहते हैं। क्योंकि हमारे पास गुणमयी शरीर है तो सुनिश्चित दुखदायी शरीर है, उसमें सुख नाम का कोई अंश है ही नहीं। केवल दुखदायी शरीर हमारे पास है, लेकिन भगवान का शरीर के विषय में चर्चा करते हुए कहते हैं कि तो निर्वाण सुखार्णवाय, वो तो निर्वाण सुख का समुद्र है। निर्वाण किसको कहते हैं, जीव की मुक्ति को निर्वाण बोलते हैं। जीव यहां से जब मुक्त होता है तो मुक्त अवस्था में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, ये माना जाता है, ये कहा जाता है। यद्यपि उन निर्वाणमय अवस्था में जीव को कोई ज्यादा सुख नहीं मिलता है, मुक्ति में ज्यादा सुख नहीं मिलता है, क्योंकि मुक्ति में सुख है तब मिलेगा, सुख है ही नहीं, 눅큰 입을 띠고 묵디 볼 때, 묵디 볼 때 눅큰 입을 띠고, 수크 프랍디 내이 위에, 개발 눅큰 입을 띠, 오늘서 벽디 쏟다에게 매 수키 오게야, 매 수키 오게야. लेकिन कहते हैं यहां कि उन्हें निर्वाण सुख अर्थात ब्रह्म सुख का वो आगार है. अर्णम का अर्थ है समुद्र है. अप्राकृत सुख, इन ब्रह्म सुख को अप्राकृत सुख कहा जाता है. लेकिन वो जीव को मिलता कितना है, जीव के स्वरूप के अनुसार मिलेगा. और जीव का स्वरूप तो कैसाग्र सतभाग से सतता कल्पित सच्चा जीव का स्वरूप है बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा. तो कितना सुख मिलेगा, इतना ज्यादा सुख मिलेगा. तो भगवान तो उस सुख का समुद्र स्वरूप है. खैर ये कहते हैं कि देखो भगवान का इसी प्रकार का एक वपु है जो सदैव उनको परमानंद में निमग्न रखता है, क्योंकि दिव्य उनका सच्चिदानंद विग्रह है. तो उन सच्चिदानंद विग्रह परम आनंददायक होता है. उनसे जो जो क्रियाएं होती है वो क्रियाएं भी दिव्य होती है. इसलिए भगवान कहते जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य, न केवल जन्म ही अपितु मेरे द्वारा किया गया कर्म है वो भी परम दिव्य धरातल पर होते हैं. और उनकी चर्चा विचार न करते हुए जीव मुक्त हो जाता है. पुनर्जन्म नहीं देते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है. अर्थात इन सांसारिक जो देह व्यक्ति के पास है वो देह से ऊपर उठ करके वो सच्चिदानंद रूप शरीर भगवान के समान एक शरीर प्राप्त कर लेता है जो सच्चिदानंद रूप है. जीवात्मा का अपना एक देह इसी शरीर में अंतर्भूत है, वो प्रकटित नहीं है. उनके प्रकटीकरण की चेष्टा श्रील प्रभुपाद महाराज ने हमको भगवत भजन के रूप में जो क्रिया दी है उन क्रिया का अवलंबन करके हम लोग इसी कार्य को करते हैं कि हम भी उनके जैसे उन सच्चिदानंद में शरीर जो हमेशा सुख में रहे ऐसे शरीर की प्राप्ति का उपाय करते हैं. तो उपाय तो उनका चिंतन भजन करके करना पड़ेगा ना. तो ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि हमारे जीवों की तरह श्री भगवान का शरीर नहीं है. आइए हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को लेकर के जाते हैं इस श्लोक में. बहुत सुंदर टीका लेकर न जा तो जन्म स्थिति संयम उपरमो यस्येति. कहते हैं भगवान का कभी जन्म नहीं होता है. न जाता, जात का अर्थ जन्म, उनका कभी जन्म नहीं होता है. वो जन्म स्थिति इत्यादि से बिल्कुल ऊपर है. ये जो सर्विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं जन्म से मृत्यु पर्यंत जो 6 विकार बताए गए वो सर्विकार युक्त तो भगवान का शरीर नहीं है. इसको कह करके कहते यस्यति कृष्ण रामाद्य अवतारणम जन्म स्थिति जो नित्यत्वम. तो भगवान का ये जो जन्म होता है ये भगवान जन्म रहित तो होते हुए भी जन्म लेते हुए दिखाई पड़ते हैं. जैसे उनका जन्म हुआ तो ये दिखाई पड़ते हैं. क्यों दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जब मनुष्यों के बीच में भगवान अवतार लेते हैं तो जिस प्रकार मनुष्य इस संसार में आता है उसी प्रकार भगवान भी आते हैं. जय महामच्छ के रूप में ऐसा नहीं है, जैसे नरसिंह देव के रूप में ऐसा नहीं है. नरसिंह खंभा पार करके बाहर आए है ना. लेकिन जब रामकृष्ण आदि जो मनुष्य के बीच में मनुष्य जैसा शरीर प्रकटित करते हैं तो उसी प्रकार की कुछ लीला युक्त शरीर वो ग्रहण करते हैं, जिसके कारण मनुष्य वो अपने जैसा सोच करके उनको प्रेम करे, है ना. भगवान मत्स्य में प्रेम होना बहुत मुश्किल है, चूंकि वहां इतना सारा ऐश्वर्य है, अब 8 लाख माइल का मछली देख करके प्रेम होगा, इन्हें मछली को प्रेम कर मछली, और 8 लाख माइल का मछली, छोटा मछली एक आध माइल का मछली भी देख करके व्यक्ति का आंख फट जाता है ना, वो क्या प्रेम होगा भगवान से। या महाकाय सुवर के रूप में, एक छोटे से मटर के रूप में छींक आया ब्रह्मा जी को, और वो शुक्र रूप भगवान का प्रकट हुआ, एक मटर जैसा, एक उंगली के आगे के हिस्से जैसा है? और देखते देखते पार जैसा हो गया। अब कोई भगवान शुक्र को कोई प्रेम करे तो कैसे प्रेम की स्थिति होगी? फिर भी लोग प्रेम करते हैं भगवान के, उन वो को उन प्रेम करते हैं, लेकिन मनुष्य को प्रेम करना आसान है, तो भगवान भी मनुष्य की तरह आते हैं। जैसे मनुष्य उन माता के उधर से जन्म लेते हैं, उसी प्रकार भगवान का भी जन्म लीला होता है, लेकिन वो लीला है, और हमारा जन्म उन कर्म के कारण, वो लीला फीला नहीं है। आजकल तो लीला शब्द बहुत सस्ता कर दिया लोगों ने, कभी कभी बोला बोलते हैं कि तो आपके गुरु महाराज तो जेल में गए ना, उन्होंने जेल जाने की लीला करते हैं, लीला मालूम नहीं है। लीला किसको कहा जाता है? जो अत्यंत आनंदपूर्ण संपन्न होती है उनको लीला बोलते हैं। भगवान का जन्म परम आनंददायक होता है, क्योंकि उनको कोई कष्ट नहीं होता है। भगवान को एक उल्लास होता है जब मनुष्य रूप में उनका जन्म होता है, तो मैं मां को प्राप्त करूंगा, मेरी मां होगी, खंभे को प्रेम नहीं करता हूं मैं, है ना, एक मेरी मां होगी, और उन ममता के कारण, उनका उनमें ममत्व के कारण भगवान को एक सुख मिलता है, आह्लाद मिलता है। वो भगवान को भी परमानंद में डालने वाला होता है, क्योंकि उनकी मां भी उस सामान्य व्यक्ति नहीं होती है ना। भगवान भक्तों में महान जिनका कार्य है, जो भगवान की अत्यंत प्रेमपूर्ण सेवा में अपने आप को नियुक्त करते हैं, अपना सब कुछ कार्य भूल करके केवल भगवान की सेवा को ही, भगवान के सुख को ही महत्व देने वाला जो जीव होता है, अपने सुख को भूल करके उनके पास भगवान आते हैं, उनके यहां उनका जन्म होता है, क्यों नहीं उनके लिए आनंददायक होगा? अत्यंत प्रेमी भक्त के यहाँ उनका जन्म, इसलिए कहते हैं चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ अपनी टीका में ये बात लिखे हैं कि कृष्ण रामाद्य अवतारणाम जन्म स्थिति और नित्यत्वम स्थिति अकर्म का जातस्य चेतनस्य न संभवति कर्मणो अपि नित्यत्वम अगुणाय। हमने अगुण शब्द का इतना व्याख्या किया है, उन्होंने कहा कि देखिए कर्म के कारण जैसे जीव का जन्म होता है किसी माता के गर्भ से, उसी प्रकार भगवान का जन्म, रामकृष्ण इत्यादि का जन्म नित्य है। नित्य का क्या अर्थ है? ऐसा नहीं कि रामचंद्र जी की लीला तिरोहित हो गई है या कृष्ण की लीला तिरोहित हो गई है, वो किसी न किसी ब्रह्मांड में कई जन्म लीला चलती रहती है, एक जगह में जन्म लीला चलती है, दूसरी जगह में भगवान अंतर्ध्यान हो रहे हैं, नित्य नित्य उत्सव चलता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में अनेक अनेक जगह में भगवान का अवतार लीला चालू होता है, वो होता रहता है, और हमारा उन कर्म का कर्म के कारण जन्म होने के चलते हम लोग आज मनुष्य योनि में है, लेकिन कल हम लोग किसी इतर योनि में चले जाएंगे। यद्यपि आप भक्त लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान अवसर देते हैं भजन करने का, भजन मनुष्य शरीर में होता है, पशु शरीर में नहीं होता है, इसलिए निश्चित भगवान उन भजनकारी व्यक्ति को मनुष्य जन्म देंगे ही देंगे, लेकिन जो लोग भजन साधन नहीं करते उस मनुष्य की डिजाइन तो तुरंत बदली हो जाएगी। 84 लाख यूनि में कोई भी यूनि पकड़ सकता है, उनकी स्थिति नित्य नहीं है। कहते हैं उन स्थिति अकर्म का कहते अजातस्य चेतन रूपाय या चेतन रूप, कहते चेतन रूप। कहते देखिए ये भगवान का जो जन्म लीला है वो एकदम स्थिर है, अर्थात भगवान का जन्म लीला के बाद भगवान का शरीर बढ़ता ऐसा नहीं है। वो जो बढ़ाया जाता है वो भगवान की कुछ उन प्रेम की आसक्ति के कारण ऐसा होता है। जैसे माता मान ले कि मेरे बेटे का शरीर कुछ बढ़ रहा है, जैसे माता यशोदा के उन दंड को रोक दिया था पकड़ करके कृष्ण ने, तो माता यशोदा अत्यंत आनंदित हो गई, तो मेरे बेटे में बल बढ़ रहा है लगता है, देखो ब्रेक लगा दिया, इतना छोटे ना खा पी करके तंदुरुस्त है क्योंकि बल भी बढ़ रहा है। वो माता की तसल्ली के लिए है। और माता जब आनंदित होती है तो यही उन प्रेमी भक्त के हृदय का आस्वादन भगवान करते हैं, तो भगवान को भी आह्लाद मिलता है, मेरी मां प्रसन्न हो गई ना। भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेमी भक्त ही उनको प्रसन्न कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए रामकृष्ण को यहां बताया गया कि तो जन्म स्थिति योर नित्यत्वम स्थिर कर्म का, उनका एक स्थिर कर्म है, हमारा एक कर्म अस्थिर है। फिर हमारे पास जो कुछ भी है, आज हम लोग कुछ कर्म करते हैं, कल वो कर्म करने की शक्ति ही नहीं रहेगी, क्या कर्म करेंगे, है ना। जो कुछ भी हमारा ज्ञान है, हमारा बल है, जो कुछ भी, ये सब एक दिन हमारे पास नहीं रहेगा। लेकिन भगवान में इन सब की स्थिरता है, क्योंकि नित्य भगवान का शरीर नित्य होने के कारण, सच्चिदानंद होने के कारण, उनके जो भी भाव है उनमें वो सब सच्चिदानंद भाव है। इससे विरुद्ध उन माइक भाव में हम लोग पड़े हुए हैं बिल्कुल, जो सब कुछ तिरोहित हो रहा है। खैर यहां समझा रहे हैं कि न संभवती कर्मणो अपि नित्यत्वम, कहते हैं उन नित्य वस्तु में कभी भी सामान्य कर्म संभव नहीं है, हमारे जैसा कर्म संभव नहीं है। इसलिए भगवान का समस्त कर्म दिव्य माना जाता है। जिनकी चर्चा विचार ना करते हुए व्यक्ति उनमें आसक्ति करके उन सच्चिदानंद विग्रह को, अपने सच्चिदानंद शरीर को प्राप्त कर लेता है जी। अब कितनी गुणावली है उनके कर्मों में उनको हम समझ सकते हैं। कोई इनके कर्मों का, उन कथा कीर्तन श्रवण कीर्तन करते हैं उन कथाओं का जो बहुत पहले संपन्न हुआ था, लेकिन उनका कीर्तन मनन श्रवण इत्यादि करके व्यक्ति अपराकृत शरीर को प्राप्त कर लेता है। ये इतना पावर है इसमें, इसलिए श्री प्रभुपाद महाराज ने स्थापित किया नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति भागवतम का सेवन करना चाहिए। क्योंकि नित्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि नित्य वस्तु भगवान के उन लीलाएं जो है, इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर, क्योंकि दिव्य धरातल पर वो लीलाएं। तो इस प्रकार इनको लिखते हैं, इसलिए कहते हैं अगुणाय प्राकृत गुण रहिताय, हमारा शरीर प्राकृत गुणों से युक्त है, सब कुछ प्राकृत, हमारी बुद्धि प्राकृत, हमारा मन प्राकृत, सब कुछ प्राकृत है और हमारा शरीर भी प्राकृत है। इससे बिल्कुल विरुद्ध सच्चिदानंद शरीर है, वह अप्राकृत, तो गुणों के द्वारा निर्मित नहीं। अगुणाय उनको कहते हैं कि उन गुणों के द्वारा निर्मित नहीं है, और ये गुणादि भी इति समस्त कल्याण गुणात्मको ही इति, कहते भगवान में जो गुणावली है वो गुणावली माइक नहीं है। उनको कहने के लिए यहां एक बात के, ये गुणादि भी इति, जैसे हमारे पास जो गुण है वो बिल्कुल त्यागने योग्य है, यही है। यही का अर्थ हमें डराने वाला है, हमारा शरीर हमको भयभीत करने वाला है ना, सदैव उनसे भय लगता है, हमारे शरीर से हम भयभीत होते हैं। कहते भयम द्वितीय अभिनिवेशात ईशाद अपितस्य विपरीत स्मृति, और स्मृति में एक विपरीत भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि दूसरी तन्मयता में हम लोग आ गए, वो तन्मयता माइक तन्मयता है, ये दूसरा अभिनिवेश हमारे चित्त में उत्पन्न हो गया है। ऐसा अभिनिवेश भगवान के चित्त में नहीं होता है, इसलिए यहां कहते हे गुणादि भीर इति समस्त कल्याण गुण आत्म को ही इति, ऐसा त्यागने योग्य गुण नहीं रहने पर भी भगवान तो निर्गुण हो जाएंगे। बोले नहीं, निर्गुण का अर्थ समझो, एक भी प्राकृत गुण नहीं है। गुण कितने हैं? तीन, और तीन गुणों में से एक भी गुण भगवान में नहीं है, इसका अर्थ भगवान निर्गुण हो गए। दिव्य गुणावली भगवान के पास है, उन दिव्य शरीर के दिव्य गुण है, एक ऐसे गुणावली भगवान के पास है कि जिस गुणों का श्रवण कीर्तन मात्र से जीव को परमालाभ मिलता है। अगर वो ट्रेंड हो जाएगा जीव गोस्वामी पाद के अनुसार, चित्त शुद्धि के लिए बहुत नाम श्रवण की अपेक्षा है, और जब नाम श्रवण वो बहुत चलता रहता है तो चित्त शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त होने पर भगवान के उन रूप श्रवण की योग्यता आती है। अभी तो नींद आता है, जैसे श्रवण प्रारंभ नहीं किया रूप का, सिद्धांत दे रहे तब तक जबकि लगता है ये कहां यार, कुछ लीला श्रवण कराना चाहिए। जब तक ये सिद्धांत हमारे माइंड में नहीं बैठेंगे तब तक हमारी प्रवृत्ति भजन में नहीं होगी। जी हाँ, श्रवण कीर्तन में हम क्यों भजन में नहीं लग रहे, या श्रवण कीर्तन में भी, ऐसे दिव्य श्रवण कीर्तन में भी हमें क्यों आलस्य आता है? इसका कारण है हमारे चित्त में ये योग्यता नहीं है, क्योंकि चित्त अशुद्ध है। अशुद्ध चित्त में भगवान के उन कभी भी उन भगवान का रूप की स्फूर्ति नहीं होती है, या उन रूप श्रवण की योग्यता भी नहीं होती है, अयोग्य होता है चित्त। इसलिए भगवान की मारकाट की लीलाएं बहुत पसंद आती है, राम रावण का युद्ध है, ओ हो मजा आ जाता है इसमें। लेकिन भगवान के सौंदर्य का वर्णन आता है, उनके रूप का वर्णन, बोले कहां फंस गए यार, दो तीन पन्ना बदली कर दो, है ना, मैं भी बदली कर देता था। जब प्रभुपाद जी की किताब में देखता था कि भगवान के रूप का वर्णन कर दो, पन्ना बदली करके आगे पढ़ो, आगे क्या है ना, चूंकि चित्त नहीं पकड़ पाता, विशुद्ध चित्त नहीं है ना। इसी कहते नामना अंतकरण शुद्धि अपेक्षा, कहते हैं कि बहुत बार नाम श्रवण करके व्यक्ति के चित्त में ये योग्यता प्राप्त होती है। जब चित्त विशुद्ध होता है तो इसमें एक योग्यता प्राप्त होती है, वो योग्यता है भगवान के और रूप के श्रवण की योग्यता, भगवान के रूप को पकड़ना चालू करेगी हृदय। और जब भगवान के रूप श्रवण की योग्यता आ जाएगी तो उनके गुणों की स्फूर्ति हृदय पकड़ेगा, उनकी गुणावली को, उनके अप्राकृत गुणावली को चित्त बन। अभी तो हमें यार प्राकृत लीला की तरह नींद आता है, अब सिद्धांत में नींद आता है तो लीला में तो या उन गुणों का वर्णन तो आएगा ही आएगा, जब सिद्धांत सुला देता है। बोले वो जन्म मरण वाला सिद्धांत ठीक है, यहां दुख है, ये दुख में अवस्था में जीव पड़ा है, ये सब सिद्धांत तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन ये सिद्धांत इनके बाद ये सिद्धांत आता है कि भगवान के जन्म और भगवान के कर्म कैसे दिव्य है, इसको स्थिर करना है माइंड में। अब इनकी वो स्थिर माइंड नहीं होने के कारण हमको हरि कथा सुख देने वाली नहीं होती है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग कहें हरि कथा श्रवण करते हुए चित्त फेस्टिवल करता है, उत्सव मनाता है, क्योंकि उनका चित्त कुछ ना कुछ शुद्धता को प्राप्त हो गया है। जी तो देखिए ये कहते समस्त कल्याण गुण आत्मा को, कहते उन समस्त कल्याणकारी गुण भगवान में, वो दिव्य गुण है। कितना मंगलकारी है, कितना कल्याणकारी है जीव के लिए, कि जिनके श्रवण मात्र से वो व्यक्ति का चित्त भी उसके योग्य हो जाता है, या अप्राकृत शरीर की व्यक्ति को एकदम भान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं और मुझे इसका ही श्रवण कीर्तन या इनके ही नाम का उन जप कीर्तन इत्यादि करने में लगना चाहिए, एक स्फूर्ति आती है जी। ऐसे दिव्य भगवान के नाम और भगवान का गुणानुवाद है, उन भगवान के द्वारा की गई जो लीलाएं हैं क्रियाएं हैं, तो ये समस्त कल्याण गुण आत्मा को ही इति निश्चय ही, ये निश्चय के लिए ही शब्द है। कहते वैष्णव उक्तर अप्राकृत गुण अप्राकृत सर्गुण तेन भगवतम उक्ते, भगवान के छह गुण बताए गए, छह ऐश्वर्य का जो वर्णन किया गया, तो जीव को ऐश्वर्य बहुत पसंद है, इसलिए सड़ ऐश्वर्य का पहले भगवान कौन है, तो कहते भगवान में ये छह लक्षण है, संपूर्ण श्री, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैरा, सब संपूर्ण मात्रा में, बहुत थोड़ा थोड़ा हमारे पास है, बहुत थोड़ा ज्ञान है तो बहुत अल्प ज्ञान है, इतना ज्ञान हो गया है कि हम लोग जीवात्मा है शरीर नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार घसीट करके मंदिर लाते हैं मंगल आरती मंगलारती इत्यादि में, इधर आत्मा है उठो क्या करे, आत्मा है जाना पड़ेगा, आत्मा है एक उल्लास के कारण जो लोग उठते हैं ना, वो तो मंगल आरती से पहले उठ करके वेट करते हैं मंगल आरती का, हम आत्मा है, यहीं से पुष्टि होगी, आत्मा की दर्शन स्पर्शन भगवान की कथाओं का श्रवण पूरा दिन मिलेगा, वो तो उठते ही उसमें लग जाता है, उससे पहले मंगल आरती के एक दो घंटा पहले उठ करके चालू हो जाते हैं। हा जी हाँ, और हमको तो घड़ी भी बोलता है उठ उठ टाइम हो गया, तब भी उनको दबा करके सोते हैं, चुप रह जाते थोड़ा सुने, शरीर के सुख में लगे रहते हैं, जो दुख है, जो अंत तो दुख है, ज्यादा सोना सुख है, सुख नहीं है दुख है, लेकिन हम सुख मान लेते हैं और घड़ी को चुप कर देते हैं। खैर यहां कहते कि वैष्णवोक्तर अप्राकृत गुण सर्गुण, भगवान के उन सर्व ऐश्वर्य का वर्णन दिया जाता है, जो ऐश्वर्य की लालसा हम सबके चित्त में पड़ी हुई है, और इसी लालसा के कारण उन भगवान को हम लोग समझना चाहते हैं, बाद में वो लालसा तिरोहित हो जाती है, ठीक है वो ऐश्वर्य है ऐश्वर्य भाव नहीं, भगवान के इन ऐश्वर्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमसे च्युत होता रहता है, इसलिए अच्युत भगवान को इन अच्युत ऐश्वर्य को अप्राकृत तरीके से प्राप्त करने का उपाय जो श्री प्रभुपाद जी ने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो नवदा भक्ति है वो साधन है, इसकी प्राप्ति के लिए हमको ये साधन बताया है, लेकिन इन साधन में हमारी प्रवृत्ति अशुद्ध चित्त होने के कारण वो टिक नहीं पाती, उनकी सदैव स्फूर्ति नहीं रह पाती है, लेकिन नित्यम भागवत सेवया जो करते हैं, नित्य प्रति भागवतम का श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, तो सुनिश्चित उनके चित्त में उन आत्मज्ञान स्थिर हो जाएगा, और जो जप करते हैं, देखिए जब महाराज चित्रकेतु अपने पुत्र शोक में विह्वल हो रहे थे, तो अंगिरा जी ने ज्ञान देना चालू किया, और ज्ञान के तो बोले आप कौन है, आप कौन है, आप तो क्यों कपिल साक्षात है, या आप साक्षात अंगिरा जी है, साक्षात नारद जी, दोनों वही थे, आप है कौन, अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, बोले इतना बढ़िया ज्ञान आपके पास है, लेकिन वो ज्ञान स्थिर नहीं हो रहा था, तब नारद जी ने कमाल किया, नारद जी बोले देखो एक उपनिषद का मंत्र तुमको देता हूं, वो मंत्र जब से ज्ञान स्थिर होगा, हा यही वो मंत्र जप है, वो वही मंत्र जप हमको दिया है उस ज्ञान की स्थिरता के लिए। लेकिन उस मंत्र जप में ही हम सो जाते हैं तो कैसे होगा, बताइए कैसे होगा, है ना। उसी में ही हम सो जाते हैं, श्रवण करते हुए भी नींद आता है, क्या करें, हम सो जाते हैं, है ना, तब कैसे होगा। भाई नाम तो चिंतामणि है, लेकिन चिंतामणि जब लोहे को स्पर्श करेगा तब तो कंचन करेगा। इन लोहे के बीच में बहुत कचरा पड़ा हुआ है ना, मणि डाल दिया जाए, स्पर्श से नहीं हो रहा है, होगा होगा, आधा घंटा हुआ, घंटा हुआ, यार 22 साल निकल गए जब करते हुए, फिर भी हमारा नहीं हुआ। कहते स्पर्श मणि है, स्पर्श मणि है नाम, हमारा क्यों नहीं हो रहा है, कचरा है भीतर, बीच में कचरा पड़ा हुआ है, वो माया का कचरा स्पर्श होने नहीं देता है, नाम का स्पर्श से विहीन रखते हैं। अरे कोई मान लीजिए कोई कोई मणि लेकर के कोई टैंक में डाल दे, लोहे का टैंक देखा, अरे यार पूरा टैंक को सोने का बना लूंगा, स्पर्श मणि है ना, डाल देते हैं और डालने के बाद वेट करते हैं, लेकिन वो तो होता ही नहीं, होता ही नहीं, क्या बात है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, बोलते ले तो पत्थर, कोई स्पर्श मणि नहीं था, वो तो स्पर्श मणि जिन्होंने दिया था, चलो 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 मेरे साथ चलो, बोले वो स्पर्श मणि नहीं पत्थर था, बोले कहां फेंका, बोले वो तो एक टैंक में फेंका, बोले ठीक है टैंक में है ना, तब तो ठीक है। वो गए दोनों, देखा कि यार स्पर्श मणि तो डाला है तो कंचन नहीं, जब जांच किया गया तो बहुत सारा कचरा, 4-5 उंगल का कचरा था उसमें, उन कचरे में ऊपर वो मणि था, वो स्पर्श ही नहीं किया था। ऐसे हमारा बहुत कचरा है ना, हरि नाम करते हो, यहाँ जाना है, वो जाना है, आज क्या क्या खाना है, प्रसाद में क्या क्या बना है, यह है वो है, तो कचड़े को स्पर्श ही कहा करता है, वो तो चित्त को स्पर्श ही नहीं करने दे रहे हैं, वो चित्त में कोई दूसरी वस्तु है ना, कैसे उनका पवित्रीकरण होगा, नहीं होगा, उस मन को साफ करना चाहिए। इसीलिए कटा कीर्तन के द्वारा भी स्थिर नहीं हो रहा है मन, और जप के द्वारा भी स्थिर नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए, कथा, कथा में जैसे विनिमित हो जप, जप में जैसे विराम हो कथा, हा निरंतर जब चलेगा तो एक आदत होगा, और तब ये ज्ञान स्थिर होगा, जो पाठ कर रहे हैं वो पाठ स्थिर तब होगा जब मंत्र जप प्रॉपर किया जाए, तो व्यक्ति आत्मिक धरातल को पकड़ पाएगा और आत्मिक धरातल पर कार्यक्रम उनका होगा। देखो सब कुछ प्रभुपाद जी ने दे दिया है, लेकिन कमियां हमारी कुछ है, उन कमियों को व्यक्ति को दूर करना चाहिए, है ना। खैर यहां कहते हैं कि उस प्रकार भगवान का सुखा अनवायति ब्रह्मत्वम अनोर अपि अनिमने अति सूक्ष्मायति परमात्मत्वम। वो कहते देखिए ये भगवत सुख कैसा है, वो ब्रह्म सुख, भगवान सदैव वासुदेव स्थिति में रहते हैं, एक अवस्था है तो वासुदेव अवस्था है, वासुदेव अवस्था एक विशुद्ध सत्व, सदैव उनका चित्त विशुद्ध सत्व में रहता है, इसके कारण वो कहते हैं कि वो सुखानुभूति सुखों का समुद्र है, सुख रूप तो हम भी है, कभी हम भी सुखी होते हैं, लेकिन हमारे पास सुख कैसा है, बहुत अल्प सुख है, और होता भी है बाह्य रूप में कुछ सुख तो 2-4 आदमी को बांटने के बाद खलास हो जाता है, जैसे शीशी में दवाई, सुख है, एक दो आदमी को बांटा, इनके बाद में हमारा इतिरोहित हो जाता है, जैसे धन संपत्ति या कुछ भी वैभव इत्यादि का सुख हम बांट देते हैं किसी को, इसे हम भी सुखी नहीं होते, वो भी सुखी नहीं होता है, लेकिन उनको इन आध्यात्मिक धरातल पर उठाने के लिए हरि कथा दिया जाए और इन सब सिद्धांतमय बातें जो ब्रह्मा जी गान कर रहे हैं उनको समझना चाहिए। यदि भी मुझ मेरी तैयारी अगले श्लोक के ऊपर थी, सॉरी, क्योंकि मुझे 6-9 बताया गया था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे वर्णन कर रहा हूं, मैं बहुत थोड़ा टीका है आचार्य जी का, कहते हैं इसलिए सुख अनुभवति, वो सुखों के समुद्र है, सुख अनुभवम सुखों के बिल्कुल समुद्र है, और उसी सुख को हम लोग इस मरीचिका मई माया में देख रहे हैं, जो सुख आगे ही आगे दिखाई पड़ता है। ये तो मरुभूमि है संसार, और माया का एक जल दिखाई पड़ता है, हाँ उधर जाऊंगा तो जल मिल जाएगा, हरिणी की तरह दौड़ते हुए मर जाते हैं हम लोग, सुख मिलता नहीं है, लेकिन वो सुखों का अर्णव सागर है। जैसे उन सुख सागर में नाना मछलियां उछल कूद करती है और अनेक अनेक प्रकार से अनेक क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार मुक्त होने के बाद ऐसा नहीं कि उन ब्रह्मत्वम का अर्थ है मुक्त होने के बाद सब कुछ गया चौपट, नहीं, मुक्त होने के बाद असली सुख प्रारंभ होता है। ये तो पहला धरातल है मुक्ति का, मुक्ति पहला धरातल है, अब सुख को प्रारंभ कहते हैं। कैसे ना ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते सम सर्वेषु भूतेषु, ये तो अवस्था होती है, है? लेकिन मद भक्ति में लभते पराम, तब मेरी प्रेम भक्ति को वो प्राप्त करने की योग्यता उस चित्त में आती है जब ब्रह्मभूत चित्त होता है। जी हाँ, अर्थात चित्त शुद्ध होने पर ब्रह्मभूत होता है। तो इन चित्त शुद्धि का जो प्रोसेस है नाम कीर्तन इस कलयुग में, उसी को ज्यादा से ज्यादा, और श्रवण और कीर्तन भगवान की कथाओं का श्रवण या कथाओं का कीर्तन, इनको कभी रोक नहीं देनी चाहिए, कभी नहीं। इसीलिए प्रभुपाद महाराज मृत्यु छैया पर पड़े हुए थे और कृष्ण को समझा रहे थे, कृष्ण ऐसे बस आप वीडियो देखिए, उन्होंने विराम नहीं लिया कि नहीं नहीं चलो विराम विरमित करेंगे, नहीं, क्योंकि उनको इतना आस्वादन आ रहा था, सामने मृत्यु भी था लेकिन वो कृष्ण रूप में था, कृष्ण को समझाते हुए है ना, यम यम वापिस समुभाम तज्जितिंत के लिए बोला तम तम विद्धि सदा सदा तद्भाव भावित है ना, वो कृष्ण को एक्सप्लेन करते हुए वो कृष्ण लोक स्वाभाविक है ना। तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार का एक ऐसा टाइट शेड्यूल रखना चाहिए जिस शेड्यूल में कहीं भी गैप ना हो, श्रवण और कीर्तन का कभी गैप ना पड़े, ऐसा एक शेड्यूल बना लीजिए। प्रभुपाद जी का शेड्यूल था, हमारे सामने वो डिटो रखे हैं कैसे भजन करना चाहिए, ये लो मैं उनका आचरण करके तुम लोग को, जैसे महाप्रभु ने सिखाया, क्योंकि ये भक्ति ऐसा वस्तु है उनको बोलने के से नहीं सिखाया जाएगा, उनको आचरण करके शिक्षा दीजिए और तब इधर आएगा, नहीं तो इधर नहीं उधर ही जाएगा, बंदूक एक साइड चलेगा इधर नहीं आएगा, वो कथा अंदर नहीं जाएगी, बोलते हुए भी नहीं जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है सदाचार व्यक्ति को, और भक्ति का सदाचार आहार निश श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि में लगे रहना, यही भक्ति का सदाचार है। एक सदाचारी भक्त के जीवन में यही कार्यक्रम होना चाहिए, और इतना कार्यक्रम होना चाहिए उनको एक थोड़ा सा भी फुर्सत न मिले इससे, क्योंकि थोड़ा सा फुर्सत पाते ही इन माइक मन फिर माया में घुस जाएगा। खैर यहां कहते हैं कि द अनोर रणिम ने कहते हैं अणु से भी सूक्ष्म परमात्मा तत्व है, जैसे जीवात्मा के अंदर परमात्मा रहते हैं, बताइए जरा, और जीवात्मा को अणुओं में सर्वश्रेष्ठ परमाणु में से भी एक छोटा बताया जीव को, 10,000 वह हिस्सा गिना है ना, अच्छा तो उनसे भी छोटे हो सकते हैं भगवान, ऐसा लिखते हैं अति सूक्ष्म परमात्म तत्व कहते अपरिगण्यम यथातीतम, अगण्यम यथातीतम, आज परमात्मा का कौन गणन कर सकता है, जीवों का कोई गण कर कोई गिनती हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में कितने जीव है, एक ब्रह्मांड में नहीं एक पृथ्वी पर कितने जीव हम गिनती नहीं कर सकते, पृथ्वी के परमाणु का गिनती हो सकता है लेकिन जीवों का गिनती, आहा तो भगवान भी अनंत है, उन परमात्मा के रूप में उनका स्थिति भी अनंत है, अपरिगण्यम कहते हैं ये तामिति, ये अपरिगण्य है भगवान। कितने भगवान का स्वरूप है गिनाओ, परमात्मा के रूप में गिनाओ जरा, अणु और परमाणु में व्याप्त है। कोई जीवों को गिनती कर लेगा तो अणु का गिनती करना पड़ेगा, परमाणु का गिनती करना पड़ेगा। अनगिनत है भगवान का स्वरूप, अंडांतरस्थ परमाणु चांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषोत्तम, ब्रह्मा जी सिद्धांत देते हैं। इसी ब्रह्मा जी फील कर रहे हैं, उनके विग्रह को देख करके आगे के श्लोक बहुत सुंदर है, कल का श्लोक बहुत अच्छा है, आप चूकना नहीं। चूंकि मैं जो तैयारी किया था पिछले श्लोक का, इसके ऊपर से मुझे पता चला कि इतना अद्भुत श्लोक है, जिसमें सब कुछ दिया है, साधन भी दिया है, सब कुछ सुष्ट वर्णन किया है ब्रह्मा जी के द्वारा। इसी वपु को किस प्रकार प्राप्त किया जाए ये उपाय भी दिया हुआ है सब कुछ। और वो वपु कैसा है, वो ब्रह्मा जी के हिसाब से वो बात ब्रह्मा जी रख रहे हैं। खैर, तो धाम मूर्ति यस्य तस्मेति, तो धाम का अर्थ मूर्ति है, अर्थात भगवान का शिव विग्रह चतुर्भुज, जैसे परमात्मा चतुर्भुज है तो वह एक धाम माना जाएगा। अब गिनती कीजिए स्वरूप का, कोई गिनती नहीं कर सकते। लेकिन इस पर भी साधु लोग खास करके जीव गोस्वामी पाल एक सिद्धांत देते हैं बहुत सुंदर। ऐसे परमात्मा अनगिनत रूप है परमात्मा का, लेकिन एक दो रूप में कहते हैं, एकम एव सच्चिदानंद रूपम द्विविधम आविर्भूतम, दो रूप में आविर्भूत होते हैं, एक नाम के रूप में और एक शिव विग्रह के रूप में। जी, ये नाम साक्षात कृष्ण है, उनका अनुभव तपित दूषित जैसे जीवा में गन्ना का अनुभव नहीं होता है, उसी प्रकार नाम लेते हुए भी उन नाम साक्षात कृष्ण है ये अनुभूति नहीं होती है। वो तो डिपेंड है चित्त शुद्धि पर, हमारा चित्त शुद्ध नहीं होने के कारण इसका अनुभूति नहीं है। बाकी जिनको अनुभव है वो कभी नाम से उनकी मानती नहीं जीभ। चैतन्य महाप्रभु अपनी जीभ को पकड़ देते, छोटे बच्चे थे 5 साल के, उस समय महाप्रभु को पेशाब जाना था, तो महाप्रभु ने कहा कि तुम जरा ठहरो मैं आता हूं, अपनी जीभ को वो दांत के दबा करके रखा और पेशाब करके पानी डालो बोले अभी जीभ, और बाद में जीभ को छुट्टा किया, कृष्ण 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 उच्चारण कर के, महाप्रभु ये इस अवस्था में किसी का मृत्यु हो जाए तो? बोले अरे नाम की महिमा को तो तुम जानते हो भाई, नाम में कोई नियम नहीं है, कभी भी जपो, क्योंकि कभी भी शरीर छूट सकता है, इससे निरंतर का आदत जीव को रखना चाहिए। ऐसा नहीं है लोग बोलते हैं 15 करोड़ हो जाएगा के 20 करोड़ हो जाएगा नाम तो बाध्य होकर के भगवान दर्शन देंगे। भगवान परम स्वतंत्र व्यक्तित्व है, नाम परम स्वतंत्र है भगवान की तरह, वो बाधित नहीं है कि इतना होने के बाद इतना होना ही पड़ेगा, नहीं, उनकी कृपा, वो कृपा से बाध्य है, वो कृपा करने के लिए बाध्य हो जाए, इतनी मेहनत जीव को करनी पड़ेगी अपनी ओर से। जी, तो बहुत सुंदर सूक्ष्म सिद्धांत है, धामूर्ति तन मूर्तिर परिच्छिन्नत्वे अपि अचिंत शक्त्या विभुत्वम चोक्तम। कहते हैं कि वो ये मूर्ति कैसी है, बोले परम विभु जिनका आदि और जिनका अंत नहीं है, विशाल विभुम्नि भगवान को कहते हैं, तो विभु कहते हैं, और उनके साथ अचिंत शक्तियों का समन्वय है। कैसे वो समस्त शक्तियों का समन्वय है, उनको कल के श्लोक में मैं बताने के लिए लाया था, लेकिन कल मेरा क्लास नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।